दिनभर सोमवार 10 अगस्त मैं हूं निखिल रंजन। भूमि अधिग्रहण बिल शीतकालीन सत्र तक के लिए टला, भारतीय संसद में नहीं खत्म हुआ गतिरोध।
आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा।
BSNL केस में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन को 3 दिन में समर्पण करने का हुक्म। झारखंड के देवघर में भगदड़, 10 लोगों की मौत, 30 घायल, गृह सचिव ने किया दौरा। काबुल में एयरपोर्ट के पास कार बम धमाके में 5 लोगों की मौत, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। ललित मोदी की कथित मदद के मुद्दे पर आज भी संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई। विपक्षी दल कांग्रेस के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ललित मोदी की मदद के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से सफाई मांगी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राजधानी काबुल में हुए सिलसिलेवार हमलों के बाद पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। आज काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक हुए कार बम धमाके में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। हाल के दिनों में काबुल में हुए हमलों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। राष्ट्रपति गनी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि आत्मघाती हमलावरों के ट्रेनिंग कैंप और बम बनाने की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में ऐसे ही चल रही हैं। उन्होंने कहा, अगले कुछ हफ्तों में जो फैसले पाकिस्तानी सरकार लेगी उनका असर अगले 2 दशकों में दोनों देशों के रिश्तों कैसे रहेंगे इस पर पड़ेगा। हम एक ऐसे युद्ध में अपने लोगों का खून बहते हुए नहीं देख सकते हैं जिसे कहीं और से आयात कर हम पर थोप दिया गया है। हमने शांति की उम्मीद की थी लेकिन पाकिस्तान की जमीन से हम पर युद्ध थोपा जा रहा है। ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। तुर्की में सुरक्षा बलों पर अलग अलग स्थानों पर हुए कई हमले हुए हैं। कुर्द बहुल दक्षिणी पूर्वी सिरनाक प्रांत में एक बम धमाके में 4 पुलिस अधिकारी मारे गए, जबकि एक सैन्य हेलीकॉप्टर पर हुए हमले में 1 सैनिक की मौत हो गई है। देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में एक पुलिस स्टेशन पर हुई संदिग्ध आत्मघाती हमले में 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। अमरीकी वाणिज्य दूतावास पर भी गोलीबारी हुई है। पुलिस का कहना है कि द रिवोल्यूशनरी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फ्रंट से जुड़ी एक महिला हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी में संघीय अभियोजकों ने ऑनलाइन वार्तालापों की खुफिया निगरानी बढ़ाने संबंधी खबर करने वाले 2 पत्रकारों के खिलाफ शुरू की गई विवादित जांच रद्द कर दी है। पत्रकारों पर देशद्रोह के शक में जांच शुरू की गई थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के नजदीकी शहर वेस्टरेस में एक फर्नीचर स्टोर पर हुए चाकू हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 घायल है। संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीरिया के सबसे प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक माजेन दरवेश को 3 साल कैद के बाद रिहा कर दिया गया है। उन्हें अपने 2 सहकर्मियों के साथ 2012 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे। उनके सहकर्मियों को पिछले महीने ही रिहा कर दिया गया था। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके माजेन दरवेश की पत्नी का कहना है कि अभी उनके मामले में अंतिम निर्णय आना बाकी है। अमेरिका के मिजोरी प्रांत के फगसन में निहत्थे काले युवक माइकल ब्राउन की हत्या का 1 साल पूरा होने पर निकाली गई रैली पर पुलिस फायरिंग में 1 युवक घायल हो गया है। BBC समाचार।
दिनभर में आपका स्वागत है। आप हमें bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। भारतीय संसद का एक और दिन बिना किसी काम के बीत गया। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करते रहे और दोनों के बीच सुलह नहीं हो सकी। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इन सबके बीच भूमि अधिग्रहण बिल पेश कर देगी, लेकिन अब इसे शीतकालीन सत्र तक के लिए टाल दिया गया है। पूरे दिन के घटनाक्रम का ब्यौरा सुनिए नितिन श्रीवास्तव से।
2 दिनों के ब्रेक के बाद सोमवार को भी संसद के मानसून सत्र पर ललित मोदी का मुद्दा हावी रहा। जहां दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी को दी गई कथित मदद पर सुषमा से सफाई देने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद की कार्यवाही बाधित करने के कतई पक्ष में नहीं है। लोकसभा में 44 सदस्यों वाली विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर सत्तारूढ़ भाजपा सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाती रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रशासनिक तारीफ किए जाने को भी आड़े हाथों लिया। राहुल का कहना था कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के चलते लाखों नौजवानों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, जबकि मोदी अपने लोगों की सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। सुषमा स्वराज से सफाई की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा,
प्राइम मिनिस्टर डज नॉट फील इट नेसेसरी टू कमेंट ऑन देम। ही प्रेजेस द चीफ मिनिस्टर। ही कंप्लीटली इग्नोर्स द फैक्ट दैट द फ्यूचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन मध्य प्रदेश हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय हिज चीफ मिनिस्टर। ही कंप्लीटली इग्नोर्स द फैक्ट दैट देयर इज ए बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन ए क्रिमिनल एंड हिज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। प्लीज एक्सप्लेन टू द कंट्री एंड द पीपल ऑफ इंडिया, आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा।
इस बीच सोमवार सुबह लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सभी को थोड़ा हैरानी में डालते हुए कांग्रेस पार्टी को संसद की कार्यवाही में खलल न डालने की बात करते हुए चेतावनी सीधे डाली। हालांकि मुलायम सिंह की पार्टी ने कांग्रेस के 25 सदस्यों के निलंबन का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को संबोधित करते हुए कुछ सवाल पूछे। मुलायम सिंह यादव,
इस पक्ष में है कि सदन चले, ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। कृपा करके मेरी एक आपसे प्रार्थना है, हमेशा स्पीकर चाहता तो बंद हो जाता, बुला लिए अभी बंद हो जाएगा, जब बुलाती नहीं आप।
उधर भाजपा सरकार में वित्त मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने आज फिर सदन में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि सुषमा स्वराज का तो सिर्फ वे बहाना बना रहे हैं, दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि सदन की कार्यवाही हो।
His party has consistently taken a stand that they are for a disturbance and they will not allow the proceedings to go on. So we get an uneasy impression that the issue of the external affairs minister is only a pretext. Their real reason is they don't want the constitution amendment on the GST to be cleared in this session.
सदन के बाहर आकर भी अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नहीं चाहती कि जीएसटी कर जैसे महत्वपूर्ण कानून पास हो सके।
उसको रोकना कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है, वो चाहती हैं कि देश प्रगति न करे, देश की अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट मिलना है जीएसटी के माध्यम से, इस देश के व्यवसाय को जो बूस्ट मिलना है वो किसी प्रकार से न मिले।
केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भी अपने नेताओं का बचाव किया और कहा कि राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वह सभी मुद्दों को सदन में उठाकर चर्चा में भाग ले। राहुल गांधी के तीखे तेवरों के बीच एक बात जो साफ होती जा रही है वो ये है कि विवादों में घिरा रहा भूमि अधिग्रहण कानून अब शायद संसद के अगले सत्र तक खिसका दिया जाए, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों को अभी भी इसके कई अनुच्छेदों पर एतराज है। बहरहाल अब जब मानसून सत्र खत्म होने में चंद दिन ही शेष हैं, गौर करने वाली बात यह भी है कि 21 जुलाई को शुरू हुए सत्र में पक्ष विपक्ष की सियासी नोकझोंक के चलते एक दिन भी कामकाज ठीक से नहीं हो सका है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
मद्रास हाईकोर्ट ने बीएसएनएल केस में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन को 3 दिन के भीतर सीबीआई के सामने समर्पण करने का फरमान सुनाया है। जून के आखिर में मारन को 6 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दी गई थी। सीबीआई ने इस जमानत को वापस लेने के लिए अर्जी देकर कहा कि मारन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की बेंगलुरु में स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी से।
जी, मद्रास हाईकोर्ट में यह निर्णय दिया है कि अगले 3 दिन में उनको सरेंडर करना पड़ेगा सीबीआई के सामने। ये पुराना केस है जिसको बीएसएनएल केस कहा जाता है। ये बीएसएनएल केस का मामला ये है कि जब ये टेलीकॉम मंत्री थे उस वक्त उन्होंने एक ISDN लाइन का कनेक्शन ली थी उनके घर पे चेन्नई में और दिल्ली में भी, मगर खासकर उनके घर में जो लाइन लगी थी उससे करीब 700 से भी ज्यादा लाइन, टेलीफोन लाइन डेटा ट्रांसफर के लिए उनके भाई का जो टेलीविजन चैनल है उनको मदद की थी। ऐसे लाइन्स में डेटा ट्रांसफर जब होता है तो इसके लिए टीवी चैनल इस पे बहुत सारा पैसा खर्चते हैं, मतलब पैसा दे खरीदी जाती है, इनके भाई के चैनल को ये मुफ्त में मिली थी।
तो क्या लग रहा है अब उनके पास कोई और रास्ता है, अब मतलब उनको पेश होना पड़ेगा तो क्या वो गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं?
जी, अगर वो सरेंडर नहीं करे तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मगर ऐसा लग रहा है कि वो अभी 3 दिन का वक्त है तो शायद कल या परसों वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे।
उनकी तरफ से अभी कुछ बयान आया है?
जी, वो और उनके वकील दोनों कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी।
इमरान दयानिधि मारन पर इसके अलावा और भी कोई केस है क्या?
इनके खिलाफ और एक इल्जाम है कि इन्होंने एयरसेल के प्रमोटर शिवशंकरन पर इतना दबाव डाला था कि उन्होंने तो उनका जो अपना कंपनी में हिस्सा था उसको मलेशिया की मैक्सिस कंपनी को बेचना पड़ा, और उसके बाद मारन, दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में का इल्जाम लगा है उस केस में, और करीब 700 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी जो जमीन प्रॉपर्टी थी उसको कब्जे में ले लिया।
मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन को 3 दिन के भीतर सीबीआई के सामने समर्पण करने का फरमान सुनाया है। जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। और अब खबर झारखंड से। झारखंड के देवघर में शिव मंदिर के बाहर मची भगदड़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। घटना सुबह 4:30 बजे तब हुई जब कांवड़िए जलाभिषेक के लिए मंदिर के बाहर कतार में लगे हुए थे। घटना के बाद गृह सचिव ने घटनास्थल का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजामों को और बेहतर बनाने की बात कही है। इस मामले में ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे झारखंड हमारे सहयोगी नीरज सिन्हा के पास। नीरज, मेरा ख्याल है कि अब तक ये मीटिंग ओवर हो गई होगी जो अधिकारियों की चल रही थी गृह सचिव के साथ, क्या कुछ निकलकर सामने आया है अब तक?
गृह सचिव और राज्य के पुलिस प्रवक्ता एसएन प्रधान और गृह सचिव एनएन पांडे देवघर गए थे। देवघर में उन्होंने सारे हालात की जानकारी ली है। इस बीच सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुरारी लाल मीणा को देवघर का स्पेशल एसपी प्रतिनियुक्त किया है। सावन के मेले तक वे वहां स्थिति संभालेंगे। इनके अलावा सरकार ने आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार को देवघर का विशेष जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के तौर पर प्रतिनियुक्त किया है। इन अधिकारियों ने देवघर में अपना कामकाज संभाल लिया है। इस बीच हादसे से जुड़ी जानकारी के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, और अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि जो 30 कांवरिय घायल थे उनमें 4 की स्थिति गंभीर है और उन्हें हेलीकॉप्टर से अभी तुरंत राजधानी रांची लाया गया है। यहां उन्हें सरकारी अस्पताल रिम्स में भर्ती कराया जा रहा है। इस बीच जिला प्रशासन उपायुक्त अमित कुमार से हमारी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। उन्होंने बताया कि मरने वाले 10 लोगों में 5 की पहचान कर ली गई है। इनमें 3 लोग उत्तर प्रदेश, 1 बिहार और 1 ओडिशा के हैं। 5 लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि उनका कहना था कि एक महिला की जो मौत हुई है वे वेशभूषा और शक्ल से नेपाली लग रही है, जाहिर है वो उनका संबंध नेपाल से हो सकता है। जी,
इस बीच मंदिर में जो कांवड़िए जो दर्शन कर रहे हैं वहां पर जो है लोगों के बीच पर क्या इस घटना का कोई असर हुआ है, वहां कोई फर्क पड़ा है उनकी संख्या पर, या वो बदस्तूर जारी है?
नहीं, थोड़ी चिंता तो कांवरियों के बीच में है, लेकिन जितने कांवरिया को आज जलाभिषेक करना है, जैसे आज सुबह से ही 1,02,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था सुबह में, कि आज सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है और 1,02,000 लोगों का सुबह को ही रजिस्ट्रेशन हो गया था, और दोपहर बाद जो हमारी प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत हुई थी तब तक 60,000 से 70,000 लोगों ने जलाभिषेक कर लिया था। और अभी जो हमारी तुरंत डीसी से बात हुई, उन्होंने बताया कि आज देर रात तक 1,00,000 से ज्यादा कांवरियों का जलाभिषेक कर लेंगे, इसकी व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। लेकिन जो ये घटना हुई है उससे कांवरियों में चिंता है, भय है, अफरा तफरी का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं।
बहुत शुक्रिया झारखंड से नीरज सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर आएंगे अपडेट लेने के लिए। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। झारखंड में ही डायन बताकर हत्या और प्रताड़ना के मामलों की सुनवाई के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। राजधानी रांची के गांव मांडर में पिछले शनिवार को डायन होने के आरोप में 5 आदिवासी महिलाओं की हत्या के बाद राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की है, और इसके साथ ही मांडर की घटना को लेकर पुलिस को 1 महीने में चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। सुनिए रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
डायन हत्या की ताजा घटना को लेकर पुलिस ने अनुसंधान तेज किया है। अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के डीआईजी अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि
सरकार और विभाग दोनों ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। अभी तक कुल 27 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि 1 महीने के अंदर उनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करेंगे। अनुसंधान की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है ताकि अधिकाधिक अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता मिल सके।
गौरतलब है कि 2.5 साल के दौरान झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर 124 लोगों की हत्या की गई है। इस साल अब तक 30 लोग मारे गए हैं। लिहाजा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नामित किए जाएंगे। झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ माझी कहती हैं कि इन मामलों में स्पीडी ट्रायल निहायत जरूरी है।
हाँ, होनी चाहिए क्योंकि ना उनके लिए इतना कम, मतलब अब जो सजा है वो इतना कम दिया हुआ है कानून में कि इसी की वजह से लोग डरते ही नहीं है। तो इस तरह से स्पीडी ट्रायल होने से जो दोषी है वो डरेंगे और आगे से ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पिछला वाला मामला है मांडर का, वहाँ तो मैं उसी दिन नाम से जब बस हुई उसके बाद में वहाँ पहुँच भी गई थी। वहाँ पे मैंने खुद गाँव में घूम कर सब कुछ देखा, बातचीत की। तो उस दौरान जैसे कि लोग इसके लिए कोई पश्चाताप किसी के मन में नहीं था, गाँव वालों के मन में, और वो लोग ये कह रहे थे कि जो भी किया ठीक किया, वो हम लोग करेंगे, नहीं तो पिछले 15 साल से इतने लोगों की मौत हुई है, इसकी वजह से आगे भी होगी।
रांची सिविल कोर्ट में कार्यरत पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुष्पा सिन्हा कहती है कि ऐसे मामलों में पुलिस अनुसंधान तेज हो।
ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के लिए भी है और यह हमारे लिए भी है। चूंकि मैं खुद एक एपीपी हूं तो चाहूंगी कि जो ट्रायल है वो, जो इन्वेस्टिगेशन हो जो हमारा कोर्ट में, वो तेजी से हो जाए, सही समय पे हो जाए, सही समय पे चार्जशीट सबमिट हो जाए, सही समय पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। तो हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है कि कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे केसेस में हम लोग, हमारे कोर्ट ने इसमें सजा भी दी है, सजा हुई भी है, हम लोगों ही ने सजा करवाई, लेकिन है कि जो काम हो वो थोड़ी त्वरित।
जबकि अधिवक्ता मोनिका कहती हैं,
ये बात डेफिनेटली सही है कि इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे जैसे जगहों में जैसे मांडर हो गया, पतरातू हो गया, सब जगहों में इस तरह की छोटी मोटी ये सब जो घटनाएं हैं ये आमतौर पे देखी जाती है। तो मेरा ये कहना है, बात सही है कि थोड़ी सी लॉ प्रोसीजर्स है उसको थोड़ा सा फास्ट होना होगा ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इसमें ही सिर्फ नहीं, बाकी जितने भी मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हों, सिविल मैटर्स हों, हम लोग भी ये चाहते हैं, एज एन एडवोकेट हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोसेस जो भी है, जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो भी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हो ताकि क्लाइंट के साथ साथ में हमारे, हमको भी प्रॉब्लम ना हो, और जो भी इस क्लाइंट को ईजी से ईजी और जल्दी से जल्दी इस पे उनका जो सलूशन हो उनको मिल पाए।
बहरहाल डायन बिसाही के नाम पर हत्या की घटनाओं को रोकने में नए सिरे से सरकारी तैयारी का असर परखा जा सकता है। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
BBC रेडियो पर दिनभर आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ। पोर्न वेबसाइटों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आज भारत सरकार ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर जरूर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन हम हर किसी के बेडरूम में नहीं जा सकते। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए एक बड़ी बहस की जरूरत है। बहस तो जब होगी तब उसके नतीजे पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल तकनीकी रूप से इसे रोक पाना कितना मुमकिन है ये जानने के लिए BBC ने बात की तकनीकी मामलों के जानकार प्रशांत रॉय से, और उन्होंने जो कुछ बताया उसका सार सुनिए विदित मेहरा और रोहित जोशी से।
क्या पोर्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना तकनीकी रूप से मुमकिन है?
इंटरनेट पर किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाना बेहद मुश्किल है, खासकर पोर्नोग्राफी पर। भारत सरकार ने 857 साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, जबकि इंटरनेट पर दसियों लाख पोर्न साइटें मौजूद हैं। प्रतिबंध के बावजूद इन साइटों को खोलने के कई तरीके हैं। सामग्रियों को असरदार तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए फायरवॉल की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट नेटवर्क पर निगरानी रखने और उन पर नियंत्रण करने के लिए बना है। निजी कंपनियों के लिए तो इसका इस्तेमाल करना आम है, लेकिन पूरे देश में इसे लागू करना बहुत कठिन है। सिंगापुर और चीन जैसे कुछ देशों में सरकारी फायरवॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। असरदार प्रतिबंध के लिए सरकार को सेंसरशिप टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश करना होगा। चीन इसमें कामयाब है। वहां का जन सुरक्षा मंत्रालय एक दशक पुराना ग्रेट फायरवॉल चलाता है। इसे गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। चीन नुकसानदायक समझी जाने वाली सामग्रियों को ब्लॉक करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है।
क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एडल्ट पोर्नोग्राफी में अंतर करने का कोई तरीका मौजूद है?
चाइल्ड पोर्नोग्राफी की पहचान का कोई आसान तरीका नहीं है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए पुलिस किसी संदिग्ध को पकड़ भी लेती है तो उसके कंप्यूटर या नेटवर्क पर तस्वीरें ढूंढना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तस्वीरों को नुकसानदेह नहीं माना जा सकता। एनकेस जैसी अत्याधुनिक फॉरेंसिक जांच से तस्वीरों के रंग, रूप और बनावट के आधार पर विश्लेषण करना मुमकिन है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका किसी साइट को ब्लैक लिस्ट करना है। ब्रिटेन का इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ऐसा ही करता है। इसे मानना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इच्छा पर निर्भर है। कानून के तहत कोई आदेश हो या उपभोक्ताओं की शिकायतें हों तो इस तरह की साइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसा फेसबुक और ट्विटर के मामलों में किया जाता है।
क्या भारत में इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी का कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद है?
किसी साइट पर मौजूद सामग्री क्या पोर्न है, इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल है। इस वजह से इस बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खास साइट्स पर ट्रैफिक की पहचान कर सकते हैं। इसी वजह से 2014 के अंत में ये बात सामने आई थी कि पोर्न साइटों पर लोगों के जाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पांचवें स्थान पर था, जबकि अमरीका अव्वल था। पोर्न हब साइट पर आने वाले भारतीयों में एक चौथाई संख्या महिलाओं की थी।
क्या ये पता लगाना मुमकिन है कि कितनी सामग्री मोबाइल से और कितनी दूसरे माध्यमों से सर्च की गई है?
पोर्न हब के मुताबिक इस साइट पर जाने वाले आधे भारतीय उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन से सर्च करते हैं। सच यह है कि 90% भारतीय इंटरनेट यूजर और 85% ब्रॉडबैंड यूजर मोबाइल वाले हैं। भारत में खासतौर पर गरीब उपभोक्ता पोर्न देखने के लिए एक दूसरे के माइक्रो एसडी कार्ड को साझा करते हैं।
किस देश में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है?
हालांकि इस बारे में किसी स्वतंत्र एजेंसी का कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है, सिवाय पोर्न हब जैसी कुछ साइटों के। गूगल का आंकड़ा दिखाता है कि 8 सबसे अधिक पोर्न सर्च करने वाले देशों में 6 मुस्लिम देश हैं, जिनमें पाकिस्तान शीर्ष पर है।
भारत में पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइटों पर रोक लगाना कितना मुमकिन है, इस बारे में प्रशांत राय की से मिली जानकारी का सार सुना रहे थे विदित मेहरा और रोहित जोशी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अफगानिस्तान में काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य गेट के पास चेक पॉइंट पर एक कार में बम धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में 5 लोग मारे गए हैं और कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि हमले का मकसद विदेशी नागरिकों की गाड़ियों के एक काफिले पर हमला करना था। पूरा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
धमाके के बाद हवाई अड्डे में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक तरफ सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरना शुरू किया और दूसरी तरफ आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार ये धमाका 7:30 बजे हुआ। इस धमाके के वक्त चेक पॉइंट के पास ही मौजूद एक व्यक्ति ने बीबीसी को बताया, जब ये जबरदस्त धमाका हुआ तो मैं यहीं से गुजर रहा था। धमाके के ठीक बाद वहां पर धुएं और धूल का गुबार उठने लगा। मुझे एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया और एक आदमी गाड़ी के अंदर जलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। पुलिस का कहना है कि इस घटना में 5 लोग मारे गए हैं और कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का।
नमस्कार श्रोताओं, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं संदीप सोनी और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार
राजेश जी, पहला पत्र ले रहे हैं खगड़िया बिहार से। लिखने वाले हैं प्रभाकर प्रसाद वर्मा। ये लिखते हैं कि 9 अगस्त के दिन भर कार्यक्रम में सुनकर एक नई जानकारी मिली कि बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं तो अभी तक यही जान रहा था कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले।
हमारे श्रोता हैं और ये तंज कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। हम बिना किसी हील उज्जत के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये जबान है जो कभी फिसल जाती है, हो सकता है कि गलती से ऐसा कहा गया हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव ही होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों में हम अभी से लग गए हैं। और आप इंतज़ार करिए, आपको हम बिहार लोकसभा चुनाव की नहीं विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे आपके लिए।
अगला पत्र लेते हैं, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले से आया है। लिखा है रफ़ीक इब्राहिम ने कि मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। आज सुबह के प्रसारण में वात्सल्य राय की जंतर मंतर से हरियाणा के दलितों की इस्लाम धर्म कबूल करने वाली रिपोर्ट सुनी तो मेरी शिकायत दूर हो गई, क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोग ऐसे इस तरह की खबरों को कवर नहीं करते हैं और शिकायती ईमेल है मेरा तो शामिल शायद ना करें।
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भी कोई खबर होती है और जिसको हमारी जो संपादकीय है, हमारी जो कसौटी है, उस पर हम तोलते हैं और पाते हैं कि इसको रिपोर्ट करना चाहिए तो हम करते हैं।
अगला पत्र लेते हैं जीशान नैयर का, बेगूसराय बिहार से आया है। ये लिखते हैं कि मोहनलाल शर्मा बीबीसी के अमिताभ बच्चन बन गए हैं। पहले फैला उजियारा और उसके बाद विवेचना में जो जिस तरह से प्रस्तुति दी है वो काबिले तारीफ है। वो जिक्र कर रहे हैं हिरोशिमा वाली विवेचना का, इन्हें काफ़ी पसंद आई।
सबसे पहले तो ये कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी है कि ज़ीशान साहब की चिट्ठी आई और उस सैकड़ों हज़ारों चिट्ठियों का जो पुलिंदा है उसमें से संदीप सोनी आपने ढूंढ निकाला, इसके लिए आपका शुक्रिया। ज़ीशान साहब बहुत वक्त से ये शिकायत कर रहे थे कि इनकी चिट्ठियाँ शामिल नहीं की जाती, तो लीजिए आज आपकी चिट्ठी शामिल हुई ज़ीशान साहब।
इसी तरह का एक और पत्र आया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड से इंद्रजीत पानू का। ये लिखते हैं कि पिछले 6 साल से बीबीसी सुन रहा हूँ, bbchindi.com के जरिए सुनता हूँ कार्यक्रम और पहली बार खत लिख रहा हूँ। खत शामिल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और खत शामिल किया तो आगे भी खत लिखता रहूंगा।
जी देखिए हमने कर लिया शामिल, आगे भी जरूर लिखते रहिएगा।
फैला उजियारा को लेकर बहुत सारी चिट्ठियां आ रही हैं। वैसी ही एक चिट्ठी है दरभंगा बिहार से संगीत कुमार सानू की, लिखते हैं कि इस बार भी फैला उजियारा बहुत अच्छा लगा जो सम्राट अशोक पर केंद्रित था, लेकिन आपका समय प्रसारण का बहुत कम है, इसे यदि आप 20 मिनट कर दें तो हमारी जानकारी और बढ़ेगी।
जो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, जो जानकारी हमारे पास है, हम उसको एक तरह से सारगर्भित तरीके से उसका जो निचोड़ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है और सम्राट अशोक के बारे में या कौटिल्य के बारे में या उससे पहले भगवान बुद्ध और महावीर के बारे में हमारे जो फैला उजियारा के सारे एपिसोड्स थे वो सब हमारी वेबसाइट पर हैं, उनको आप सुन सकते हैं अगर दोबारा सुनना चाहें। और ये सभी व्यक्तित्व ऐसे हैं कि इनके बारे में पढ़ने के लिए दुनिया भर की सामग्री बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो अगर आपकी रुचि जगी है तो हमारे लिए खुशी की बात है।
इंडिया बोल के बारे में कई चिट्ठियां हमें मिल रही हैं। ऐसी ही एक चिट्ठी लिखी है गया से अमरजीत कुमार ने। ये लिखते हैं कि मैं 1997 से आपका श्रोता हूँ, मुझे आजकल इंडिया बोल कार्यक्रम बोझ लगने लगा है, ऐसे कार्यक्रम का क्या औचित्य है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हम लोग आपको सुनना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को जो बोलने में लड़खड़ाते हों, जो खुद कंफ्यूज होते हों, उनकी बातों को सुनने से हमें क्या मिलेगा।
इंडिया बोल को इंडिया बोझ कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो हज़ारों श्रोता हैं वो बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, हमें ईमेल भेजते हैं, हमें चिट्ठियाँ भेजते हैं और हमारे लिए एक मौका होता है हमारा और हमारे श्रोताओं के बीच जो संवाद है उसको दो तरफा संवाद बनाने का, जिसमें कि हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं और हम उनसे सवाल ही कहते हैं पूछने को। तो ये हमारे लिए एक तरह से अपने श्रोताओं से जुड़ने का तरीका है, लेकिन जाहिर है कि हम लोग पेशेवर ब्रॉडकास्टर हैं और वो आम श्रोता हैं, तो अगर आप उनसे उम्मीद करें कि वो माइक्रोफोन पर हमारी तरह बिना रुके बिना लड़खड़ाए बोल रहे हो तो ये शायद थोड़ा सा अन्याय है उनके साथ। लेकिन आपने जिस तरह से चिट्ठी लिखी है आपको भी उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप उसका स्तर बेहतर कर सकते हैं तो आपको भी उस कार्यक्रम में आना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हफ्ते में एक दिन एक उपयोगी मंच है श्रोताओं की आवाजें सुनने का हमारे लिए।
तो अमरजीत कुमार गया से जो हमें पत्र भेजा था वो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार इंडिया बोल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इसी के साथ चिट्ठियों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं, एक बार आप पता बताते चलें।
जी, अगर आप डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल भेजना चाहें तो हमें लिखें hindi.letters@bbc.co.uk पर। आपकी राय में इतना ही, नमस्कार, नमस्कार।
और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राजधानी काबुल में हुए सिलसिलेवार हमलों के बाद पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। तुर्की में सुरक्षा बलों पर हुए अलग अलग हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। जर्मनी में संघीय अभियोजकों ने ऑनलाइन वार्तालापों की खुफिया निगरानी बढ़ाने संबंधी खबर करने वाले 2 पत्रकारों के खिलाफ शुरू की गई विवादित जांच रद्द कर दी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के नज़दीकी शहर वेस्तरास में एक फर्नीचर स्टोर में हुए चाकू हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल है। सीरिया के सबसे प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक माजेन दरवेश को 3 साल कैद के बाद रिहा कर दिया गया है। अमेरिका के मिजोरी प्रांत के फगसन में निहत्ते काले युवक माइकल ब्राउन की हत्या का 1 साल पूरा होने पर निकाली गई रैली पर पुलिस फायरिंग में 1 युवक घायल हो गया है। इसराइल ने पश्चिमी तट पर आगजनी हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध कट्टरपंथी यहूदियों को रिहा कर दिया गया है। इस हमले में एक फलस्तीनी बच्चे और उसके पिता की मौत हो गई थी। चीन में अधिकारियों ने सरकारी टीवी चैनल के एक चर्चित प्रस्तोता को कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ जेडांग का मजाक बनाने के आरोप में सजा देने का आदेश दिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। दिनभर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटनाचक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। स्टूडियो मैनेजर अजीत सारथी के साथ निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।